नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही अहम उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। उद्बोधन का नाम है उपासना का महत्व। अब देखिए, उपासना शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में पूजा पाठ, कोई कर्मकांड, बस यही सब आता है। लेकिन क्या इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है या शायद कुछ ज्यादा गहरा है? आज हम इसी गहरे अर्थ को, उपासना के असली मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी विषय है। पूज्य गुरुदेव तो बहुत साफ कहते हैं कि इंसान की जो असली उन्नति है ना, वो बाहरी चीजों से नहीं होती। मतलब शरीर कितना अच्छा है, पैसा कितना है, दिमाग कितना तेज है, इनसे नहीं। असली तरक्की अंदर से होती है, जो हमारी आंतरिक चेतना है ना, उसके विकास से। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे पेड़ की जड़ें, वो दिखती नहीं, जमीन के अंदर रहती हैं, लेकिन वही पूरे पेड़ को संभालती हैं, उसको पोषण देती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी अंतः चेतना, हमारा जो अंदरूनी स्वरूप है, वही हमारे विकास का आधार है।
हाँ, ये जड़ वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। अच्छा गुरुदेव, उपासना शब्द का अर्थ भी तो समझाते हैं। उप आसन यानी पास बैठना, और ये तो हम सब जानते हैं कि संगति का असर तो पड़ता ही है। जिसके साथ रहेंगे उसका रंग चढ़ेगा, बुरी सोबत में बच्चे बिडल जाते हैं, कौन नहीं जानता। पर अच्छी संगत का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, इसके लिए गुरुदेव रामायण की वो चौपाई याद दिलाते हैं, काक होहिम पिक बकुह मराला, है ना, कौवा भी कोयल बन जाता है, बगुला हंस।
बिल्कुल, और यहीं पे बात और गहरी हो जाती है। उपासना मतलब भगवान की संगति, ईश्वर के पास बैठना। लेकिन इसका मकसद सिर्फ बैठना नहीं है, मतलब फिजिकली बैठ जाना ही काफी नहीं है। असल मकसद है कि हम ईश्वर के गुणों को देखें, समझें और उन्हें अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। उनकी जो महानता है, पवित्रता है, न्याय है, करुणा है, उन चीजों को अपनाना। जैसे अच्छी संगत का फायदा तभी है जब हम अच्छे गुण सीखें, है ना?
हाँ बिल्कुल, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या असल में मतलब प्रैक्टिकली लोग उपासना इसी इरादे से करते हैं? ज्यादातर तो मुझे लगता है मामला उल्टा ही दिखता है। लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्यों? ताकि भगवान उनकी सुने, नौकरी लगवा दे या कोई मुकदमा जितवा दें, बच्चों की शादी करा दें, मतलब भगवान उनकी इच्छा पूरी करें। गुरुदेव ने तो कहा भी है कि जैसे लोग धूप बत्ती की रिश्वत देकर भगवान को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं, वो हनुमान जी वाला उदाहरण भी तो है कि दो पड़ोसी, दोनों भक्त एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं, क्या मतलब है इनका?
बिल्कुल, ये सचमुच एक विडंबना है। पूज्य गुरुदेव इसे अध्यात्म के नाम पर फैला हुआ बहुत बड़ा अज्ञान कहते हैं। सोचिए, अध्यात्म तो आया था अज्ञान मिटाने, और यहाँ अज्ञान ही अध्यात्म में घुस गया है। वो एक और बढ़िया मिसाल देते हैं, जैसे बहुत तेज बारिश हो तो पत्थर की चट्टान भीग तो जाएगी, पर क्या वो नरम होगी?
नहीं।
क्या उसमें कोई बीज उग सकता है?
नहीं।
बीज उगने के लिए जमीन को तैयार होना पड़ता है, उपजाऊ होना पड़ता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा तो बरस रही है, हमेशा बरस रही है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, पात्र बनना होगा, अपनी अंदर की जमीन तैयार करनी होगी। ये सोचना कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही अकड़े रहे और भगवान हमारे लिए अपने नियम बदल दे, ये तो ना समझिए।
अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम भगवान पर हुकुम नहीं चला सकते, अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। ये जो मनोकामना पूर्ति की बात है, इस पर एक तरह से रोक है?
देखिए, रोक इस मायने में नहीं कि आप अपनी जरूरतें या इच्छाएं रख ही नहीं सकते, लेकिन अध्यात्म का जो सार है गुरुदेव के अनुसार, वो है खुद को ईश्वर की मर्जी के लायक बनाना, अपनी मर्जी थोपना नहीं, बल्कि अपनी पात्रता, अपना वर्थ बढ़ाना, खुद को इतना शुद्ध, इतना निर्मल बनाना कि ईश्वरीय कृपा को हम ग्रहण कर सकें, उसे संभाल सकें। तो ये कोई सौदा नहीं है, ये एक साधना है, खुद को बदलने की साधना, ताकि जो दिव्य है वो हमारे अंदर आ सके, ठहर सके। तो सवाल ये है कि पात्रता कैसे बढ़े।
तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात उभर कर आ रही है,
बिल्कुल
ये है कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से उपासना कोई लेन देन नहीं है, कोई इच्छा पूरी करवाने का तरीका भर नहीं है। ये तो ईश्वर के पास बैठकर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर अपने अंदर अच्छे गुणों को, सच्चाई, प्रेम, सेवा, इनको जगाने की प्रक्रिया है। एक तरह का आंतरिक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन।
बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर उपासना का असली मतलब चट्टान की तरह कठोर बने रहना नहीं, बल्कि एक उपजाऊ जमीन की तरह ग्रहणशील दिनना है, तो ईश्वर की उस दिव्य संगति का, उनके पास बैठने का वास्तविक लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर किन खास गुणों को, किन आंतरिक योग्यताओं को विकसित करने की जरूरत होगी जिससे वो सचमुच ईश्वरी कृपा को धारण करने लायक बन सके, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
ॐ शांति।